వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూరమర్దనం
వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూరమర్దనం
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగత్గురు
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురు
అజోపి సన్నాభ్యాత్మ భూతానామేశ్వరు పిసన్ ప్రకృతిం స్వామభిష్టాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా
ప్రకృతిం స్వామభిష్టాయ
యదా యదా హి ధర్మస్య జ్ఞానీ భవతి భారత
యదాయి ధర్మస్య శ్లానిర్భవతి భారత
అభ్యుత్థానం ధర్మస్య తదాత్మానం శ్రేయామ్యహం
అభ్యుత్థానం ధర్మస్య తదాత్మానం
పరిత్రాణాయ సాధునా వినాశాయ దుష్కృతా
పరిత్రాణాయ సాధునా వినాశాయ దుష్కృతా
ధర్మ స్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే
ధర్మ స్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే
యుగే జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం మేవం యో వేత్తి తత్ప్రతః స్వాదేహం పునర్జన్మ నతి మామితి సోర్జున
స్వాదేహం పునర్జన్మ నతి మామితి సోర్జున
వీత రాగ భయ క్రోధ మన్మయ
మాముపాశ్రితరాగభయ మన్మయా మాముపాశ్రితా
బహవో జ్ఞాన తపసా పూతా మత్ భావ మాగతా వసుతం దేవం కంస చాణూరమర్దనం
వసుతం దేవం కంస చాణూరమర్దనం
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురు
పరమానందం వందే జగద్గురు.
కృష్ణం వందే జగద్గురు
విష్ణు వందే జగద్గురు
శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్
శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్
శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్
శ్రీరామ్ జయ
శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్
శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్
శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్ శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్
శ్రీరామ్ జయ
Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai
ధ్యేయం సదా పరిభవఘ్నమభీష్టదోహం తీర్థాస్పదం శివవిరించినుతం శరణ్యం భిక్త్యార్తిహం ప్రణతపాలభవాబ్ధిపోతం వందే మహాపురుషతే చరణారవిందం. జైసా లిఖా హై వైసా బోల్ రహా హూం. పురుషో కో సమ్ఝానా బడా సహజ హై, సుగమ హై, పర్ స్త్రియో కో సమ్ఝానా బడా కఠిన హై. स्त्रियां मानती नहीं, समझती नहीं. किसी घर में पांच स्त्री है और पांच पुरुष है, कोई बात हो गई, पुरुषों को समझाया जाए बहुत जल्दी मान लेते हैं, पर स्त्रियों को समझाए तो वो नहीं समझती, अपनी जिद और अकड़ी में बैठी रहती है. भाई भाई में हजारों रुपए में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में फर्क नहीं पड़ता, पर स्त्रियां छोटी छोटी चीज के लिए लड़ मरती हैं. उल्टा स्त्रियां समझाने वाले को समझाती हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो, घर हमको चलाना पड़ता है. 100 में 98 घरों में लड़ाई है वहां स्त्रियों से ही होती है. चाहे पांच स्त्रियां हो वहां भी लड़ाई, जहां 3 स्त्रियां हो वहां भी लड़ाई. लड़ाई स्त्रियों के कारण से होती है, पुरुषों के कारण से नहीं होती. स्त्रियों को समझाना कठिन है. आप स्वयं सोचकर देख लो, आप अपने भाई को समझा सकते हो वो मान जाएगा, पर आप अपनी स्त्री को समझा के देखो नहीं मानेगी. प्रायः स्त्रियां एक दूसरे का नुकसान चाहती हैं, बैर रखती हैं, मुंह फुलाकर बैठ जाती है, ताना मारती है, रात दिन क्लेश भुगतती है, मरने के बाद भी दुख पाती है, परंतु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती. अरे ये जो कलह परिवार की जो कलह होती है, ये साक्षात दुख का रूप है, आग है आग. हर एक माँ बहन को ख्याल रखना चाहिए और आग लगे तो तत्काल बुझा देनी चाहिए. आप ये क्यों भूल जाती हो कि आग लगती है तो पहले उसको खुद को जलाती है, फिर जो है घर को जलाती है. कोई आग लग जाए तो एक घड़े से प्रारंभ में बुझ जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा फैल जाए तो 100 घड़े से भी नहीं बुझती। क्रोध की आग बढ़े तो धूल या जल डाल दो। धूल डालना क्या है? क्षमा कर दो। जल डालना क्या है? गम खा जाओ। आपकी इसमें बड़ी विजय है, आपको बड़ा लाभ होगा। सरल और मीठे वचन बोलो। दूसरे को क्रोध आ गया तो उसमें अपना दोष समझो। ऐसा नहीं कि क्रोध तो उसने किया, मैं क्या करूं, उसने क्रोध किया है, लड़ाई झगड़ा वो करती है, ऐसा नहीं। क्योंकि लड़ाई दो की गलती के बिना नहीं होती। तो उसको क्रोध आया है तो अपना दोष समझे, क्योंकि मैंने क्या पता कुछ कह दिया या मेरे स्वभाव की कोई कमी, तभी तो क्रोध आया। नहीं तो क्रोध किसको पसंद है बताओ? गलती उसकी हो तो भी अपनी तरफ से क्षमा याचना करनी चाहिए। बहुत शूरवीरता का काम है। अपने को क्रोध आए तो क्रोध आते ही उसको दबा लो। क्रोध के साथ अहंकार भी बढ़ता है, अहंकार के साथ क्रोध बढ़ता है। अहंकार की और क्रोध की आपस में बड़ी मित्रता है। क्रोध आने लगेगा तो उस समय में अहंकार को कहो कि देखो क्रोध में, क्रोध की आग में घी का काम मत करना, चुप हो जाओ। क्रोध क्यों आता है? अपने मन के विपरीत बात हो जाती तो क्रोध आता है। तो उस समय एक आपको युक्ति बताएं। आपके मन के विपरीत कोई घटना हो जाए, कोई आदमी आपको कुछ कह दे, कोई आपका अपमान हो जाए, कोई ताना मार दे, तो अपने मन को समझाओ कि चुप, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, थोड़ा गम खाओ, परीक्षा ले रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, इसके पीछे भगवान का हाथ है, ये व्यक्ति नहीं बोल रहा है, इसके अंदर से भगवान बोल रहे हैं और वो मेरे भीतर से परीक्षा ले रहे हैं। यदि क्रोध आ गया तो तुम फेल हो जाओगे, क्रोध नहीं आया तो तुम पास हो जाओगे, ऐसा मन में भाव रखना चाहिए। देखो यदि आप ऐसा दृढ़ भाव बना लोगे, सारी दुनिया मिलकर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकती। जो हमारे से विपरीत हो रहा है उसमें किसी बड़े का हाथ है, छोटे मोटे का हाथ थोड़ा ही है। अपने भाग्य का भी फल हो सकता है, अपने स्वभाव का भी कोई दोष हो सकता है, ईश्वर का विधान आ सकता है, हो सकता है। इसलिए उसको सहन करो, दूसरे के क्रोध को सहन करो। दूसरे को क्रोध आए तो अपनी तरफ से मुस्कुराओ और उसको ठंडा वचन सुनाओ। इस पर भी यदि उसका क्रोध शांत नहीं हो तो एकदम चुप हो जाओ, किसी बात का जवाब ही मत दो, गम खा जाओ। यदि आप उसके बदले में क्रोध होकर के कुछ कहोगे तो ये तो एक तरह से यहां चिंगारी फूटी तो यहां चिंगारी फूट गई, फिर ये चिंगारी बड़ी हो गई तो ये बड़ी हो गई, ऐसे करते करते आग फैल जाएगी। ये क्रोध के वचन होते हैं, चिंगारियां हैं, उम्र भर तक लोग याद रखते हैं। इसलिए क्रोध के वचनों को बहुत चुप करके न बोले, गम खा जाओ, यही सबसे बढ़िया उपाय है। लोग तीर्थों में जाते हैं, बड़े चाव से जाते हैं, लेकिन कष्ट भी पाते हैं, सब करते हैं, जाने में आने में सब में कष्ट भी होता है, पर अपने स्वभाव को सुधारने में जरा सा भी प्रयत्न नहीं करते। वैसा ही क्रोध, वैसी बातें वहां घरों में। जैसे आपके आपके घर में कोई छोटा सा अंकुर आ जाए उसको उखाड़ के फेंकना सुगम होता है, दो पत्ते का वृक्ष आ जाए उसको उखाड़ के फेंकना सुगम होता है, उसी प्रकार क्रोध जो ही उत्पन्न होवे त्यों ही उसको उखाड़ करके फेंक दो। बहुत लाभ की चीज है, आपको बहुत शांति मिलेगी। काम और लोभ ये स्वार्थ है, बहुत बुरी चीज है। जब आदमी में स्वार्थ घुसता है, स्वार्थ पैदा होता तो पाप उसमें प्रवेश करता है, पोल मिल जाती है। और जब स्वार्थ का त्याग होगा तो आपसे पाप बनेगा ही नहीं। आदमी का स्वार्थ सबसे ज्यादा कहां होता है? कंचन में, कामनी में, मान में और बड़ाई में, यहां बहुत ज्यादा स्वार्थ घुसा रहता है। इसीलिए उनमें आसक्ति होती है। आसक्ति होती है तो इसमें सुख का बहम होता है कि यहां सुख मिलेगा, और उस सुख के बहम के कारण से आदमी उसमें चारों तरफ से जकड़ जाता है। मूल बात तो भाई सुख की आसक्ति है। स्त्रियों में जो मूर्खता की बातें आती हैं वो अज्ञान से आती है, छोटी छोटी वस्तुओं की इच्छा आदि से आती है। सारे दोषों की जड़ देखा जाए तो मूर्खता ही होती है, समझती नहीं। हम तो सबके लिए बोलते हैं, भगवान की भक्ति करो पर निष्काम भाव से करो, भगवान का भजन ध्यान करो निष्काम भाव से करो। मांगना कुछ नहीं, भगवान से भी नहीं मांगना है। मांग मांग के तो सभी करते हैं, फिर रात दिन आप लोग सत्संग सुनने वाले भी भगवान से मांगेंगे तो निष्काम भजन कौन करेगा? आप लोग ही घरों में आपस में लड़ोगे तो शांति कहां मिलेगी? किसी का भी आप अच्छा करो तो निष्काम भाव से करो, उसको पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये आपने उसके लिए अच्छा काम किया है। सेवा भी निष्काम भाव से करो, कुछ मत चाहो। मान बढ़ाई आराम यदि मिले तो बड़े प्रेम से उसको लौटा दो। कोई हमारी बढ़ाई करेगी, जी आपने बढ़ा रहे, नहीं नहीं भाई हमारा कहां नाम लेते हो। अंदर से बुरा लगना चाहिए। अपनी बढ़ाई अपने कानों से सुने, इससे बढ़कर मनुष्य के लिए क्या दुख की घड़ी आ सकती है। अपने कानों से अपनी बढ़ाई सुने, अपने आंखों से अपना मान देखता है, उसके लिए वो काला दिन माना जाता है। और ये भी सोचना चाहिए कि सेवा करने से, निष्काम भाव से सेवा करने से भगवान मिल सकते हैं। यदि आप कोई कामना रख करके चलोगे तो आपको छोटी चीज मिलेगी, फिर भगवान तो नहीं मिलेंगे। भक्ति का बाग लगा ले मेवा, निपजेंगे अंतन पार। भगवान की निष्काम भाव से भक्ति करो, उस भक्ति में आपको मेवा मिलेगा। छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों बर्बाद होते हो? जो मिलेगी वो भगवान के अलावा जो मिलेगी वो आपके पास रहेगी नहीं। मानव जीवन मिला है तो वो कोई ऐसी चीजों के लिए थोड़े ही मिला है जो आपसे अलग हो जाए। ईश्वर की भक्ति और सबकी सेवा, ये दो चीजें रत्न के समान मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। निष्काम भक्ति से और सेवा से अज्ञान भी नष्ट हो जाता है। भगवान स्वयं भक्त के सारे संकटों को दूर कर देते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अंतर्यामी भगवान को जो भजने वाले होते हैं, निष्काम भाव से भजने वाले होते हैं, भगवान कहते हैं उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। जो मेरे को भजता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। भगवान में चित्त लगाने से दुख मिटता है। कैसे मिटता है? कि भगवान मिटाते हैं इसलिए मिटता है। भगवान उद्धार करते हैं इसलिए उद्धार होता है। जब तक भगवान के भजन ध्यान का महत्व नहीं समझता था तब तक वह भजन नहीं करता था। समझने के बाद फिर भगवान का भजन छूट नहीं सकता है। भगवान का महत्व बैठ जाएगा तो निरंतर भजन होगा। यो माम एवं असम मूडो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत है। हे अर्जुन, जो मुझे पुरुषोत्तम मानता है वो हरदम मेरा भजन करता ही रहता है। संसार की जो इच्छाएं होती हैं उनको जीतने के कई उपाय हैं। संसार की जीतने की इच्छा क्या है? संसार की कामना की जीतने की कामना आए, क्रोध आए, लोभ आए। अब ये कब किस समय आ जाए कोई पता नहीं है, तो उनको बस में कैसे करें? तो कहते हैं सबसे बढ़िया आपको तरीका बताते हैं, आप हृदय से भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ बचाओ, नाथ बचाओ, मैं घिर गया। जैसे आप जंगल में हो, अकेले हो और आपको कई चोरों ने पकड़ लिया हो और कोई आपको दूर, कोई मकान तो दिखता है, आदमी नहीं दिखता है, तो आप पूरी ताकत लगा करके उस मकान तक आवाज सुनाते हो कि बचाओ बचाओ बचाओ। आपके मन में ये रहता है कोई न कोई मकान में होगा तो वो जरूर आएगा, पूरी ताकत लगाते हो। ऐसे अपने भाव की पूरी ताकत लगा करके भगवान से पुकारो कि महाराज ये काम क्रोध लोभ हमको मार रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। उन जंगल में रहने वाले मकानों में क्या पता कोई आदमी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, वो ध्यान देगा कि नहीं देगा, कि वहां कोई है कि नहीं है, वो आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, कुछ पता नहीं है। पर ऐसी यदि आप काम क्रोध लोभ आदि चोरों से बचने के लिए भगवान को पुकारोगे तो अवश्य आएंगे और अवश्य बचाएंगे, अवश्य रक्षा होगी, इसमें बिल्कुल विश्वास रखो, संदेह की बात नहीं है। यदि हर समय वैराग्य की वृत्ति बनी रहेगी तो संसार की इच्छाएं, संसार में क्रोध लोभ, इनको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। वैराग्य में रहो, वैराग्य के नशे में चूर रहो, उपराम रहो। महापुरुषों की कृपा से, भगवान की कृपा से, और आप जो कुछ साधन भजन करते हो उसके द्वारा किसी भी तरह शरीर से, संसार से वैराग्य प्राप्त कर लो तो फिर बेड़ा पार है, आप पर कोई संकट नहीं है। काम क्रोध आदि से होने वाला कोई संकट नहीं है। हर समय वैराग्य की वृत्तियां बनाओ, उपराम रहो, उपराम। संसार को अंतर्दृष्टि से देखो कि कुछ है ही नहीं, यहां संसार का अभाव है। संसार का अभाव ज्ञान मार्ग वाला कैसे देखता है कि ये अभी दिखता, आगे नहीं है, ये आगे नहीं है। और भक्ति मार्ग वाला हो तो उसको ये संसार दुख रूप दिखना चाहिए कि देखो अभी तो ये सुख दिखता है तो इसके बाद क्या होगा, बाद का ध्यान पहले ही देख लेता है। हठपूर्वक भी यदि आपको उपराम होना पड़े तो भी कोई बात नहीं, वैराग्य आ जाने पर सब बात ठीक बैठ जाएगी। इंद्रियों को जीतो, उसके लिए वैराग्य की बात को हरदम अपने मन में रखो। इंद्रियों का विषय से संबंध होने ही मत दो। इसमें यदि हट लगाना हो तो कोई हर्जा नहीं है, पर हट की अपेक्षा ज्ञान और भक्ति विवेक लगाना बहुत ऊंची बात है। जिस समय मनुष्य की वैराग्य की वृत्ति चढ़ती है, ऐसा आनंद, ऐसी लहरें चलती है कि सबको वो तुच्छ समझता है, वो किसी की परवाह नहीं करता, त्रिलोकी का ऐश्वर्य है वो भी टोक्सी जैसा मालूम देता है। टोक्सी माने बेल का छिलका, बेल का फल होता है, उसके अंदर से तो वो भाग निकाल लेते हैं, अंदर का भाग, फिर एक क्यों करड़ा करड़ा उसका है, वो टोक्सी होती है, उसके समान त्रिलोकी का ऐश्वर्य। संसार का चिंतन कोशिश करने पर भी नहीं होता, ऐसी स्थिति हो जाती है। रात दिन उस बैराग्य की मस्ती में झूमता रहता है। बैराग्य में भी एक ऐसा आनंद, ऐसा रस होता है, इंद्रियां वगैरह सब उसमें तरान तर हो जाती है। देखो, इंद्रियों को तो रस चाहिए, यदि आप उसको बैरागी का रस नहीं दे चुके, अपने स्वरूप का रस नहीं दे चुके, तो फिर वो विषय रस में बाद में जाती ही है। आप पहले से बैरागी रस में डुबाए रखो। हर एक भाई बहन को वैराग्य पूर्वक उपरति की वृत्ति रखनी चाहिए। यदि नहीं बनती है तो बार बार उस वृत्ति को जागृत करना चाहिए। जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए, संसार के भोग पदार्थों का भरोसा बिल्कुल मत करो। साधन भजन करते हो तो उसमें शूरवीरता में आकर कि क्या है, इतने दिन भजन होते हुए हो गए, अब देखें हमारा कौन सा विषय हमको आकृष्ट कर सकता है, ऐसे शूरवीरता में आकर न तो परीक्षा करो और न कभी अभिमान करो। ये बहुत खतरे की बात है, शूरवीरता में आकर परीक्षा करना और अभिमान करना, पतन होने का पूरा ये रास्ता है। अपने तो डरते रहो। वैराग्य और उपरति की वृत्तियां बार बार बनाओ। आप यदि वृत्तियां बनाओगे तो आपके अंदर से वृत्तियां बन जाएंगी। बैरागी की वृत्तियां बनती रहेंगी तो साधन भजन के अलावा आप करोगे क्या, स्वतः ही साधन हो जाएगा। ये बैरागी की बात है। संसार के सारे भोग हैं, ये बैरागी में बाधक हैं। यदि बैरागी आपके अंदर है, बैरागी को चाहते हो, तो आप इन भोगों की परवाह मत करो, चाहे जीवन ही चला जाए। भोग के बिना वैसे जाता नहीं है, पर ज्यादा जीवन भले ही चला जाए, परंतु उस परवाह नहीं करनी चाहिए उसकी। जब समझ पूर्वक बैरागी की वृत्तियां होती हैं, तब संसार की कोई बात अच्छी नहीं लगती। बैरागी को जागृत करने के लिए कई उपाय हैं। जंगल में जाकर एकांत में बैठो। अपने गांव शहर में जो पुराने खंडर मकान है, उन मकानों के पास जाकर खड़े हो जाओ। देखो कि ओहो, कभी इस मकान को किसी मालिक ने खड़े रहकर के यहाँ बनवाया था। बड़े बड़े कारीगर लोग लगे थे, बड़ी मेहनत से बनाया था, आज देखो क्या हो गया। ऐसे ही सबकी दशा होने वाली है। मशाणों के पास में जाकर मुर्दों को देखो, बीमारों को देखो, दीन दुखियों को देखो, इससे बैरागी तत्काल जागृत होता है। भोगियों का संसर्ग मत करो, उनकी बातें बहुत जहरीली होती हैं। जो भोगों की प्रशंसा करते हैं, उनकी बातें बड़ी जहरीली होती हैं। ऐसा समझो कि कोई सांप फणकी मार रहा है, ऐसे डर के भग जाओ। भोगियों के बीच में मत बैठो, अपने अकेले बैराग्य के अंदर चूर होकर के रहो, मस्त पड़े रहो। ये बात कह